श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक क्रमांक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका गलत ट्रांसलेशन है, कर्म करो हल्की इच्छा मत करो और चाहे कुछ भी करो, यह कर्म ही पूजा है, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आधुनिक मंदिर मथुरा रिफाइनरी पहले लिखा हुआ था, ये सब गलत ट्रांसलेशन है। तो सही ट्रांसलेशन अनुवाद कर देखते हैं। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। पहले हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तीन विचारणीय बात हैं, कर्म यानी कि स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म ये कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए। तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं भगवान। ऐसा किसी भी समय नहीं है कि आत्मा कोई कार्य ना करे। नहीं कश्चित शरणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जीवात्मा स्वभाव से ही कार्यशील है, हर समय हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये माइक जो जड़ है, वस्तु है, वो ऐसा नहीं करता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है कि आप कार्य नहीं करोगे। ऐसे कार्य करना सीखिए कि उससे हम कर्म बंधन में ना फंसे। ये चीज इस श्लोक का पहला अर्थ समझना चाहिए। क्या अर्थ है पहला? आप ऐसे कार्य करना सीखो जिससे आप कर्म बंधन से नहीं आसक्त होगे, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो उससे पहले कि कर्म बंधन के बारे में चर्चा करें, हम चर्चा करेंगे कर्मों के बारे में जो प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। तीन कर्मों के बारे में बता रहे हैं, तीन प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ होता है वेदों में निर्दिष्ट कर्म। निर्दिष्ट का अर्थ होता है बताए गए, तुम्हें ये करना है, तुमको ये करना है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो प्रभु जी सबको अलग अलग सेवा देते हैं, आप ये सब्जी काटिए, आप ये सब्जी काटिए, ये निर्दिष्ट किया जा रहा है, आप ये कार्य कीजिए, आप ये कार्य करिए। या कोई व्यक्ति आर्मी में है, या जैसे प्रभु जी आर्मी में थे तो ऑफिसर बोलते हैं आप ये कार्य करिए, आप ये कार्य करिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी होता है तो जो अथॉरिटी बोलते हैं अलग अलग निर्दिष्ट समझते हैं ना, वो कार्य होते हैं। तो वेदों में बताया है कि पत्नी का ये धर्म है, ब्रह्मचारी का ये धर्म है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है, सबका इस अलग अलग धर्म बताए गए हैं उनके गुणों के अनुसार। जैसे ब्राह्मण सत्वगुण में है तो उनको ब्राह्मणोचित कार्य करने के लिए बताया गया। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा प्रतिग्रह। क्षत्रियों को युद्ध करना क्षत्रियों का मेन धर्म नहीं है, उनका है मुख्य धर्म है, मुख्य कर्म जो है वो है राज्य करना और वर्णाश्रम धर्म की को सुचारू रूप से चलवाना पूरे राज्य में। युद्ध जब करना होता है तो उद्देश्य यही होता था कि दूसरे राज्य में जो राजा था वो ठीक से राज्य नहीं कर रहा, तब वो युद्ध करते थे। ऐसा नहीं कि आजकल की तरह वो युद्ध करते थे। और वैश्य का क्या होता है? व्यापार करना, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, लेकिन शराब का व्यापार करना नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य एक कपड़े का व्यापार है, जो भी मतलब कह सकते हैं पुण्य व्यापार कार्य करते हुए व्यापार करना। और शूद्रों का कर्म होता है परिचर्या, मतलब हेल्प करना। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति कर्म करता है ये वेदों के अनुसार करता है, लेकिन इन कर्मों को करने के पीछे क्या भावना होती है, व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, ये एक बेसिक पॉइंट है। और इंद्रिय तृप्ति चाहने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से बंधता है। भोग दो बातें होती हैं, व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति भी मिलती है और वेदों का आज्ञा पालन करने से धीरे धीरे उसकी शुद्धिकरण भी होता है, ये पॉइंट। दूसरा है विकर्म, विकर्म में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, जैसे मांस खाना वेदों में है लेकिन बहुत ही रूल्स बताए गए हैं, अमावस्या के दिन जाना पड़ेगा, खुद काटना पड़ेगा, फिर आप उसको गाली को अर्पित कीजिए, फिर खाइए। लेकिन आजकल जिस प्रकार से लोग शॉप पे जाकर के मांस खा लेते हैं या मांसाहारी शुद्ध मांसाहारी होटल में जाकर खा लेते हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं सब विकर्म में आती। देखिए शेर को वो बोलते हैं शेर भी तो मांस खाता है, तो बताइए क्या शेर को मुर्ग मुसल्लम मिलता है, उसके प्लेट पे आ जाता है? ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से अपने मानव जीवन की जो हमको फैसिलिटी मिली है उसका उपयोग इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने से, जो वेदों में वर्णित नहीं है, व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। किसकी वजह से? विकर्म की वजह से। जैसे सोम रस कह सकते हैं, सो कॉल्ड शराब है, वो भी यज्ञों के में दी जाती थी बहुत पहले और उसको पी सकते थे कुछ समय के लिए कुछ लोग इन विशेष परिस्थितियों में। इस तरह से बार खोद करके पीना ये नरक जाने के कारण। और तो ये हो गया विकर्म। विकर्म का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति भोग करता है लेकिन वेदों के अनुसार नहीं करता। तो ये जो चार नियम का पालन करते हैं भक्त लोग, अवैध संग नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना और जुआ नहीं खेलना, तो उससे प्राय मोटा मोटी सभी प्रकार के पापों से हम बच जाते हैं, सभी प्रकार के विकर्मों से बच जाते हैं और बड़ी आसानी से हम नरक नहीं जाते। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बता रहे थे बहुत सुंदर कि नरक जाने के लिए व्यक्ति को पैसा खर्च करना पड़ता है और भगवान के धाम जाना तो फ्री में चले जा सकते। माला जब करने में क्या पैसा खर्च होता है? एक बार आपने माला ले ली वो जिंदगी भर चलती रही ऑलमोस्ट। अगर इतना आपने जप किया कि वो टूट गई तब तो आपने रियली बहुत बढ़िया वक्त में जप किया है ना, माला टूटती नहीं है, 16 माला करने में तो टूटती नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कर्म करने का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति लेकिन वेदों के निर्दिष्ट वेदों की आज्ञा के अनुसार, और विकर्म का अर्थ है वेदों की आज्ञा को बिना माने। और आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कलयुग में हम लोग सब विकर्म ही करते रहते, लोगों को पता ही नहीं रहता है। जैसे कि तुलसी जी को देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी को देवताओं को क्या अपने ही चाय में डाल डाल के अपने को अर्पित करते रहते? अब देवताओं को अर्पित नहीं कर सकते तो आप अपने को कैसे अर्पित कर सकते? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों को शास्त्र की जानकारी ना होने के कारण मनगढ़ंत तरीके से लोग बहुत सारे विकर्म करते रहते, बहुत सारे पाप करते रहते। और तीसरा शब्द है इसमें अकर्म। अकर्म का मतलब है, बड़ा सुंदर अर्थ है, आप कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं बन रहा। क्या अर्थ है? कार्य कर रहे हैं फल नहीं बन रहा। जैसे अभी आप लोग कहेंगे कि प्रभु जी आप बोल तो रहे हैं तो उसका फल बनेगा नहीं, क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो कोई फल नहीं बनेगा, बल्कि इस कार्य को करने से मैं पूर्वगत किए गए कर्मों से भी मुक्त हो रहा हूं। ऐसे ही आप सुन रहे हैं तो ये कर्म है, लेकिन ये कर्म क्योंकि कृष्ण कर्म है, कृष्ण की सेवा के लिए है, इस कारण से हम मुक्त होते जाते हैं और व्यक्ति अनुभव करता भी है। जितना वो भगवान के बारे में श्रवण करता है उतना ही वो अपने हृदय में जो ग्लानि है, शोक है, उसका वो रिमूवल कर सकते हैं, उसका नष्ट होने की वो अनुभव कर पाता है, अज्ञान नष्ट होने का अनुभव कर पाता है। जैसे जितनी बार हम सुनते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, विचार करते हैं तो एक लिबरेशन, सेंस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो फंसे पड़े जगत में। तो खैर, तो हमने तीन चीजों के बारे में चर्चा किया, किसी को सबको याद हो गया? कर्म का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय तृप्ति लेकिन वेदों के अनुसार। विकर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति अब वेदों के अनुसार नहीं, और अकर्म मतलब कृष्ण की प्रीति के लिए करना। अब बताइए ये होटल में कितनी बात लोगों को पता है, और जब लोगों को बताओ तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अभी केशव के स्कूल में हमने प्रारंभ किया कल, तो अनुज जी बता रहे थे कि एक पेरेंट्स आए उनके पास बाद में, बोले क्या आप हमारे बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं? अब बताइए पहले जमाने में अगर बच्चा ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो खुश होंगे लोग, अब लोग दुखी हो रहे हैं हमारे बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, जैसे ब्राह्मण बनना ये कोई गंदा काम। ऐसे ही मुझे याद आ रहा था एक भक्त बता रहे थे साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण लोग हैं उनके यहाँ जो सबसे खराब बच्चा होता है, जो बुद्धू होता है, उसको तो वो ब्राह्मण की ट्रेनिंग देते हैं, और सबसे जो बुद्धिमान होता है उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियर मतलब शुद्ध। तो ये आजकल कलयुग में हो गया है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बने, लोगों को ज्ञान दे, उसके लोग सोचते हैं वो तो फालतू किसी काम का। खैर, प्रभुपाद ने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बताया है, तो आप लोग जहां तक मैं समझता हूँ उस चीज को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जहां तक निर्धारित, एक मिनट, इसमें एक और बातें आ रही। अब हम फलों के भोक्ता कैसे नहीं है, फलों के कारण कैसे नहीं, उसको थोड़ा समझिए। इस जगत में कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अपने मन में उसको ये पता रहता है कि इसको करने वाला अकेला मैं नहीं हूं। एक ड्राइवर भी जब ट्रक का स्विच ऑन करता है तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सर पे अपने जो कह सकते हैं स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे कुछ हाथ धरता है, जाती बत्ती करता है। आप लोग दुकान में भी जाते हैं तो सुबह कुछ शुरू करने से पहले कुछ पूजा करते हैं, यानी कि दुकान केवल आप ही नहीं चला रहे, सब जानते हैं। भक्ति करे या ना करे, माता जी लोग के जो बच्चे का एग्जाम होता है तो उसे मिठाई खिलाती है शुरू। अब मिठाई खिलाने का एग्जाम से क्या मतलब है, सबका सबका अनुभव है कि ये जो कार्य होने वाला है इसमें केवल मैं ही नहीं इन्वॉल्व हूं। बच्चे ने पढ़ाई करी है, आपने खूब पढ़ाई करके उसे पढ़वाया भी है, ट्यूशन करवाया, सब कुछ है, लेकिन आप जानते हो कि अंतिम तो गत्वा सारा कुछ आपके हाथ में नहीं है ना, सब लोग जानते हैं ना इस बात को। नहीं तो क्यों इतने सारे कलावे बांधे जाते हैं और बरगद जी के सब तरफ, सब क्यों हो रहा है। इंट्यूटिवली, इंट्यूटिव मतलब अपने हृदय से हर व्यक्ति समझता है कि कार्य केवल मुझ पे ही निर्भर नहीं है। डॉक्टर्स भी ना, बहुत फेमस डॉक्टर भी होगा बोलेगा हाँ अपना प्रयास करेंगे, सब बात कुछ भगवान के ऊपर है, भगवान कौन है उनसे वो नहीं जानते, लेकिन सब जानते हैं कि उसके ऊपर ही शक्ति है जो हमारी शक्ति के बियॉन्ड है। तो अब भगवद गीता में क्या बात बताई जा रही है, किसी भी कार्य को सफलता से करने के लिए कार्य होने के पांच कारण होते हैं। एक, हमारी इंद्रियां। इंद्रियां समझते हैं, आंख नाक कान, हमारा शरीर, क्योंकि इंद्रियां शरीर पर स्थित होती हैं। उसके बाद हमारा प्रयास, जीवात्मा, और सबसे इंपॉर्टेंट है देव यानी कि भगवान। इसके बारे में द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हो रहा था, ये बताया था मैंने आपको। द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में विवाद के, ये संवाद के, ये जो विवाद तो नहीं करते होंगे, पति से विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन संवाद हो रहा था कि देव श्रेष्ठ है कि हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। तो द्रौपदी ने आर्गुमेंट दिया कि भाई देव है बादल की तरह, समझ रहे हो ना, बादल, और जो पुरुषार्थ है वो है इस जो किसान है जो बीज रोपण कर रहा है, तो अगर बीज रोपण नहीं करेंगे तो बादल के होने से क्या होगा, बादल के जल देने से कुछ नहीं होने वाला। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, अगर आपने बीज दिया भी लेकिन अगर बादल ने जल नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, उस समय सबमर्सिबल नहीं हुआ करते थे, तो सबमर्सिबल का तो प्रश्न नहीं है, तो बादल नहीं होगा तो आपका बीज देने से क्या होगा। फिर अंतत्वा दोनों ही बातों को सामंजस्य रखा गया कि बादल भी आवश्यक है और बीज डालना हमारा पुरुषार्थ भी आवश्यक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो तुम सोच रहे हो कि अरे मैं इनको मार दूंगा, मैं कैसे खुश होऊंगा, अपनी खुशी का कारण तुम स्वयं को मान रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जो मैं कुछ करूंगा उसी से सब कुछ, जैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूं वैसा सब कुछ होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। ये एक्चुअली आसुरी प्रवृत्ति है, इसको भगवान आगे बताएंगे जहां तक मैं समझता हूँ 16वें अध्याय में, देव और असुर स्वभाव। तो उसमें हम बता रहे हैं आसुरी लोग क्या बोलते हैं, हाँ 16वें में है कि अब इतना मैंने पैसे इकट्ठा कर लिया है और मैं और प्लान करूंगा और इतने मेरे पैसे और आ जाएंगे, इतने सारे दुश्मनों को मैंने मार दिया है और बाकी जो दुश्मन उनको भी मैं मार दूंगा, ये सब मेरे मित्र हैं इनको मैं बढ़ावा दूंगा, इस प्रकार की भावना आसुरिक भावना, फलों में आसक्त होने की भावना। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। तो व्यक्ति को, अब व्यक्ति कहे अरे भाई हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी रिजल्ट के लिए करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे भी आए तो कुछ तो रिजल्ट चाहिए ना, भाई आप खाना क्यों खाते हो, तो रिजल्ट ये है कि उससे भूख की निवृत्ति हो जाए। कोई कहे कि आप खाओ लेकिन भूख की निवृत्ति ना चाहो तो फिर क्यों खाएगा व्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा फल हम चाह रहे हैं ये भी सोचना चाहिए, इस बात को भगवान आगे बोलते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फलों में आसक्त मत हो, मतलब भोग में आसक्त मत हो। अगर मुझे किसी चीज से भोग मिलेगा तभी मैं कार्य करूंगा, ये हमारा डिफॉल्ट मोड होता है, इसको त्यागो। समझ रहे हैं बात? अगर कहीं मुझे भोग मिलेगा तभी मैं उस कार्य को करूंगा, इस चीज को त्यागो। लेकिन हृदय की शुद्धि, ये भी तो एक रिजल्ट है कि नहीं है? फिर हम नाम जप कर रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं भी अच्छा लग रहा फिर भी हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हृदय शुद्ध होता है। तो हृदय की शुद्धि ये भी एक रिजल्ट है, इसकी इच्छा से हमको भक्ति, हमें कार्य करने चाहिए। बेसिकली योगी को उसके लिए ही कार्य करने चाहिए। योग का अर्थ ही है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस बात को आप यहां पे क्यों आते हैं? समझ में आ गया ना? दुनिया में बाकी सारे कार्य आप चाहे भोग के लिए करते हो, शायद करते ही होंगे, करने ही पड़ते होंगे बोल लीजिए, लेकिन जब यहां पे आते हैं तो आप अपनी इंद्रिय शुद्धि के लिए आते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो। मैं भी यहाँ पे क्यों आता हूँ? मेरा हृदय शुद्ध हो, भाई मैं भगवान के बारे में बोलूंगा चाहे आप में से कोई भी ना समझ पाए, फॉर एग्जाम्पल, फिर मेरे को तो समझ में आ रहा है ना। मैं अपनी वाणी तो सुन ही रहा हूँ, प्रभुपाद जी को पुस्तक को टच कर रहा हूँ, भगवद गीता को चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ प्रैक्टिकल इस क्लास को समझ सकते हैं। आपको ना भी समझ में, आपको लग रहा है भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ तो फायदा होगा ना। और ये फायदा हमने कभी नहीं बोला कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, कभी बोला हमने ऐसा? होगा, हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भक्ति करने से, लेकिन ये उद्देश्य है नहीं। आप समझ रहे हैं ना? क्लियरली देख लीजिए कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य तो है, बिना फायदे के लिए या बिना किसी उद्देश्य के आप नहीं आते। उद्देश्य क्या है? हृदय का शुद्धिकरण, भगवान के बारे में अधिक जानना, तो इसका खंडन नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कितना हमारा हृदय शुद्ध होगा ये भी हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करता। एब्सोल्युटली ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। अभी मैं चर्चा पढ़ रहा था ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, 14वां अध्याय दशम स्कंद में, वो ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे होते हैं छोटे बालक रूप का, तो बोलते मैंने श्रीमद् भागवतम का भी खूब जम के अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी मैं आप कृपा के, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने हृदय में, अपने स्वयं कीजिएगा, अपने विग्रह में कितना आनंद की अनुभूति कर रहे, मैं समझ नहीं सकता। मतलब कहने का ये है कि भगवान की कृपा ही अल्टीमेट कारण है किसी भी चीज की सफलता की। आप प्रेम, भगवान का प्रेम चाहते हैं, अपने हृदय का शुद्धिकरण चाहते हैं, हमें प्रयास तो करना है, लेकिन शुद्धिकरण कृष्ण की इच्छा से हो। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पढ़ी वो ये था कि कुछ लोग कह सकते हैं भाई परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ते और कृष्ण तो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, उसका मत, और आप तो कैसे बोल सकते हो कृष्ण परमात्मा है? कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में दिख रहे हैं ना, अपने दोस्तों संग खेल रहे हैं, मैया के पास जा रहे हैं, सब कुछ लीला कर रहे हैं, और हम जानते हैं परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ते, अगोचर है, अधोक्षज है। तो उसमें आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण अपनी ही इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके प्रति उनको अपने रूप का माधुर्य का आस्वादन कराते हैं। मेरी हिंदी समझ रहे हैं आप? ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं समझाता हूं कैसे सब कुछ कृष्ण पे निर्भर करता है, ये बात बता रहा हूं। जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो भगवान के रूप को देखकर कंदर्प कोटि कमनीय रूप का अनुभव करते हैं, कि करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। और जो लोग भगवान के द्वेषी हैं उनको भगवान का रूप दिख जाता है लेकिन कोई सुख नहीं मिलता। जरा सा लोग को सुख मिला, या शिशुपाल को सुख मिला, कोई सुख नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं वही भगवान हैं लेकिन अपने माधुर्य को संवरण समझते हैं आप लोग, मतलब खींच लेते हैं अगर प्रकट करते। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा कि हम जब जब करते हैं कभी कभी नाम बहुत मीठा लगता है, वही नाम, वही हरे कृष्ण मंत्र, और कोई मंत्र नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है बहुत रूखा लगता है। जरूरी नहीं कि समय आपको नींद भी आ रही हो, और बहुत आप दिखा क्लियरली, और आप देखेंगे कि ये सब चीजें जनरली रिलेटेड होता है कि अगर कोई हमने वैष्णव की सेवा करी है, कोई हमने भगवान की सेवा करी है, तो अगले दिन स्पेशली हमको कृपा मिलती है। हमारा तो ऐसा अनुभव हमने देखा है बहुत बार। तो हम ये देखते हैं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वही हरे कृष्ण मंत्र, वही हरे कृष्ण मंत्र जो कृष्ण से भिन्न है, वो अपनी माधुर्य, माधुर्य का मतलब समझते हैं स्वीटनेस को हमारे चित्त में प्रकट करते। और वही हरे कृष्ण, अगर हम अपराध होता है हमसे या कुछ भक्तों से लड़ाई होती है कुछ भी है तो उसको प्रकट नहीं करते। अब ये लोग जो साधना करते हैं वो मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां मैं बता रहा था कि एक तो ये है कि भोगों के लिए कार्य कतई नहीं करना चाहिए, भोग केवल दुख देने का कारण है, ये तो फर्स्ट लेवल है। दूसरा, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करने चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि व्यक्ति जो बाबा ने बोल रहे हैं कि अपने कर्म ना करने में भी तुम कभी आसक्त ना हो, ये लाइन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि व्यक्ति भोगों में आसक्त होने के कारण कार्य करता है। अगर उसको दिखता है कि मुझे इस कार्य से भोग नहीं प्राप्त होंगे तो फिर व्यक्ति आसक्त हो जाता है काम ना करने के लिए। मेरी भाषा समझ में आई आपको? ये रिपीट कर रहा हूं, जब मुझे लगता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, मेरे को क्या भोग नहीं मिलेगा, जब ये भावना आ जाती है कि मुझे से कोई फायदा नहीं मिल रहा, और फायदा का मतलब कंडीशन सोल्ड मतलब भोग, मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, तो फिर व्यक्ति उस कार्य को करने में, उस कार्य को ना करने के प्रति आसक्त होता है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। जैसे कुछ लोगों को अगर आप बुलाते हैं आके प्रोग्राम के लिए, चलिए गीता का प्रवचन हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, क्योंकि उनको यहाँ पे भोग नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा लेकिन भोग भगवान को मिलेगा, तो भोग नहीं मिलेगा, इस कारण से वो यहाँ पे ना आने के लिए आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आने के लिए आ सकते हैं, वैसे वो लोग ना आने के लिए आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन शुरुआत में बोल रहे हैं कि अरे भाई इनको मैं मार दूंगा तो मुझे कैसे सुख मिलेगा, अच्छा मार दूंगा पाप लगेगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, दोनों ही सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं, अरे ये भोग नहीं मिलेगा मेरे को, मेरा भोग नहीं मिलेगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, मैं युद्ध नहीं करता हूं, मैं अब जा रहा हूं जंगल जा। तो यहां पे वो कार्य ना करने के प्रति आसक्त थे। मेरा एक अनुभव है इसमें, जैसे फोर्थ क्लास में मैंने हिस्ट्री के पेपर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, आज भी याद है, और मुझे लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हुआ नहीं, तो अब मैं ना पढ़ने के प्रति आसक्त हो गया था। एग्जाम से पहले मैंने कहा क्या करेंगे, फेल तो होना ही है, एग्जाम देने नहीं जाता हूं ऐसे करके, बहुत अच्छा एग्जाम क्योंकि नंबर तो आएंगे नहीं, पढ़ा तो है नहीं, तो मैं एग्जाम ना देने के प्रति आसक्त हो गया। फिर मम्मी ने थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, थप्पड़ मारे, उसके बाद थोड़ा पढ़ाया, क्या तुम जो भी हो तुम अपना कर्तव्य करो, वो गीता को उपदेश दे रही थी लेकिन गीता पढ़ी नहीं थी, तो अपना कर्तव्य करो, अपना कार्य करो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद जो होगा। फिर नंबर फेल कभी नहीं हुए, केवल आईआईटी में फेल हुए थे एक बार हारमोनियम सीखने के चक्कर में, वो भी सबसे इजी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में पास, बाद में पास हो गए। बट आइडिया इज कि ये दोनों चीजें बहुत गोई हैं, कार्य फलों के लिए नहीं करना चाहिए, भोग के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए, ठीक है, और उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो सेकंड वाला अपने आप ही हो जाता है, और पहला वाला भी अपने आप होता है, समझ रहे हैं। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो ऐसा नहीं कि आप आंसू के टंटे बन जाओगे, हम लोग पतले दुबले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केशव को छोड़ दीजिए एक महीने के लिए, फिर देखिए 10-12 किलो तो बढ़ जाएगा। हमारे परम सुंदर प्रभु हमारे संग बस पार्टी में गए, 10 किलो वजन बढ़ गया, पतले दुबले आते ना मृदंग बजाते, 10 किलो। तो भगवान की सेवा करने वाले कोई ऐसे मतलब समझना हालत नहीं खराब हो जाती, बड़े आराम से रहते हैं। तो आपको जो शरीर के भोग के लिए भी चाहिए, या कह सकते हैं सुख के लिए चाहिए, वो भी भगवान व्यवस्था करते हैं, आपका हृदय शुद्धिकरण अपने आप होता है, बस हम तीसरे तरफ लगाए रहे अपने, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, चार चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं, उनके बारे में सुनिए, भगवान के बारे में बोलिए, जब वो सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, नहीं तो निराकारी बोलते रहेंगे, और उनकी पूजा करिए और उनका ध्यान करिए, एक्चुअली इनका स्मरण तो अपने आप ही होने लगेगा। आप कभी देखिएगा जब हम लोग जब करते हैं तो उन चीजों का स्मरण होता है जो हमने देखी और सुनी, हम देखते सुनते रहेंगे भगवान के बारे में तो अपना ही अपने आप स्मरण होने लगता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं, फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, अकर्म एक अर्थ तो यह है जो हमने समझाया था, वो भी प्रभुपाद आगे समझाते हैं। दूसरा अकर्म का मतलब है कार्य ना करने की भावना, मैं कार्य नहीं करूंगा, वो पर्टिकुलर कार्य नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जीवात्मा हमेशा कार्य करता है। जैसे आचार्य लोग समझाते हैं, अगर अर्जुन युद्ध करने के लिए से मना कर देते और जंगल में चले जाते और कोई उसके बाद अगर उनको बोलता रहे तुम कायर थे तो युद्ध से भाग गए, तो फिर वो उससे युद्ध कर लेते, फिर उसे गला काट देते। तो ये क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो कभी त्याग नहीं सकते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अपने क्षत्रिय के कर्म को तुम मत त्यागो। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए नहीं बोल रहे। पूरी भगवद गीता में कभी भगवान ने बोला नहीं कि तुम युद्ध जीत के दिखाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, युद्ध करने के लिए बोल रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। और फिर आगे इसके आगे और बात आएगी 18वें अध्याय में, वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा, वो क्या बोल रहे हैं, मैं वो करूंगा जो आप मुझसे कह रहे करने। ये और उच्चतर बात है, यानी कि मैं ये कार्य जो युद्ध है चाहे कुछ भी वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे आप प्रसन्न होंगे। तो एक लेवल क्या है, मैं क्षत्रिय हूँ, शारीरिक आइडेंटिफिकेशन है और मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ युद्ध, वो भी ठीक है, सातों गुण है एक तरह से मैं कर रहा हूँ। लेकिन और श्रेष्ठ है कि इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। ये सच्चे भक्त का लक्षण। कल हम लोग भरतपुर में थे और इंसिडेंटली वहां पे अशोक कृष्ण महाराज थे और बहुत सुंदर बात वो बोल रहे थे, कह रहे थे जगत में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है, नेचुरल सी बात, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वहां से कुछ बहुत सारा बनना चाहता है, लेकिन ऐसा वो क्या चीज है या क्या स्थिति है जिसमें बन करके हम संतुष्ट हो सकते हैं, और वो है भगवान के दास। एक्चुअली हमें बनना नहीं है, हम है ही भगवान के दास, उनकी सेवा नहीं कर रहे। तो आज मैं एक प्रार्थना पे विचार कर रहा था, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है कृष्ण के प्रति, वो कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में प्रेम के बिना मेरा जीवन एकदम दरिद्र है, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, आप कृपया मुझे अपने सेवा में नियोजित कीजिए, दास के रूप में नियोजित कीजिए और वेतन में मुझे अपना प्रेम दीजिए। तो इसीलिए भगवत दास की स्थिति जो है वो सर्वोपरि है और बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब है दुर्लभ है, भौतिक जगत में लोगों के लिए दुर्लभ है। अगर हम भगवत दासत्व में स्थित हो गए हैं तो फिर वेतन भी मिल रहा है, हमको मिलना ही चाहिए, अभी तो हम लोग प्रयास कर। इसलिए हम भगवान के दास बनने के बजाय भगवान के दासों के दास बनने का प्रयास करते हैं, ये ज्यादा आसान होता है। और इसीलिए व्यक्ति को एक वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसका अर्थ यही होता है, फिर उसके उनके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो लोग थोड़ा कठोर बात है, जो लोग कहते हैं अरे हरे राम तो सब कुछ है, हमें दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, वो नरक नहीं जाएंगे लेकिन भगवत धाम भी नहीं जाएंगे। मैंने कभी बात बोली नहीं है लेकिन ये बात श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं 6.2.9.10। तो व्यक्ति को जैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रयास करते हैं ना, अरे वो बिजनेस में यही करना है, बहुत साधना ज्यादा अच्छी होती है एक्चुअली, जो लोग बिजनेस करते हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजनेस में शॉप पे पड़े रहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन बोलो कि भाई 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करने के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप वो नहीं करना है। और 16 माला का जप अगर नियमित रूप से करे तो एटलीस्ट वो प्रामाणिक रूप से शिष्य बन सकता है, उस मार्ग में दीक्षा प्राप्त कर सकता है प्रामाणिक रूप से। और ये अब ये जब ने बोल दिया कि दीक्षा प्राप्त करना, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे व्यक्ति आ रहे थे भी वृंदावन में, बोले मैं अपनी सासू माँ को दीक्षा दिलाना चाहता हूँ को पूछो हरे कृष्ण मंदिर पता है सासू मैया को, उनको पता है कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, तो ये तो स्टैंप वाली दीक्षा होती है, स्टैंप लग गया। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं एडिडास के जूते होते हैं, और एक एडिडास के जानते हैं आप लोग, कोई भी पतंजलि का घी होता है, ठीक है, अच्छा घी होता है, थोड़ा महंगा होता है, और हो सकता है एक चीप मार्क का घी हो, कह रहे 150 रुपए में पतंजलि का घी मिल रहा है, बढ़िया है, लेकिन फिर उससे खुशबू नहीं आएगी, और खुशबू भी आएगी हो सकता है वो सब कुछ इमिटेशन माल माल। तो प्रभुपाद जी इसलिए इस्कॉन में नियम रखे हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से 16 माला का जप करते हैं 2-3 साल, और प्रभुपाद जी के समय में खाली 6 महीने था, अभी 6 महीने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि 6 महीने वाले लोग पर खाली 6 महीने के लिए दीक्षित रहते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं, इसलिए नियम थोड़े कठोर हैं, पहले से अच्छे से भक्ति करें, और उसके बाद हमको ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि मुझे एक वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। केवल दीक्षा मात्र से भी भगवान के धाम में चले जाएंगे, हमको उसके बाद ही भक्ति करनी चाहिए, करनी होगी, लेकिन फिर प्रगति बहुत तेज होती है, एक महान भक्त का आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान के दासत्व को स्वीकार करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान ऐसा बोलता है, आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक गुरु। तो ये हम बात क्यों बोल रहे थे? भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए, अगर हम वाकई उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ।